नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियुलोकहितवमाडिदे मूरुलोकदल्लियार्कीर्तिव्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ ಕಿ ಪ್ರವಚನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನಾ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ आज के विषय में प्रवचन भक्ति भावना का संदर्भ है। प्रवचन भक्ति भावना हम जो अपने मुख से शब्द निकालते हैं ये शब्द वचन कहलाते हैं। जो भी हमारे मुख से शब्द निकलते हैं साधारण शब्द होते हैं, दिन भर जिनको हम अपने मुख से निकालते हैं इनको हम वचन कहते हैं। ये वचन प्रवचन नहीं कहलाते। प्रवचन में और वचन में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रवचन यानी क्या और वचन यानी क्या? वचन यानी जो कुछ भी आप मुख से बोलो, वचन योग के माध्यम से जो कुछ भी कानों से सुनाई देते हैं दूसरे के शब्द या अपने मुख से जो शब्द निकालते हैं इनको वचन कहा जाता है। किंतु प्रवचन अलग बात है। प्रवचन अलग है, वचन अलग है और भाषण अलग है और संभाषण अलग है। और व्याख्यान अलग है। ये सभी बातें अलग अलग क्यों हैं हम समझेंगे। भगवान के मुखारविंद से जो दिव्य ध्वनि खिरती है उसको ही हम प्रवचन शब्द से कहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि प्रवचन है, वे वचन नहीं, वह व्याख्यान नहीं, वह भाषण नहीं, वह संभाषण भी नहीं, वह है प्रवचन। प्रवचन किसको कहते हैं? तो परिवार प्रवचन की परिभाषा, प्रवचन का लक्षण ये है, अज्ञात का ज्ञान करने के लिए और आत्मानुभूति करने के लिए। अज्ञात का जो हमें मालूम ही नहीं अनादिकाल से, उस अज्ञात का ज्ञान के लिए और उसकी अनुभूति के लिए। आत्मा प्रयत्नशील होकर उसको पता लगा करके उस संबंध में, उस विषय में जो बोलता है आत्मा, उसको हम प्रवचन कहते हैं। प्रवचन देना सबको आसान नहीं, वचन प्रवृत्ति आसान है, भाषण संभाषण व्याख्यान भी आसान है, लेकिन प्रवचन आसान नहीं। प्रवचन वही दे सकते हैं जो अज्ञात के ज्ञाता हैं, जो हमारे लिए अनादिकाल से पता नहीं था वो सब पता लग गया। तो क्या क्या पता लगा? जो हमें आज तक पता नहीं है वो क्या है? हमको आत्मा का ज्ञान पता नहीं था, हमको हमारा ज्ञान मालूम नहीं, हमको आत्मानुभूति नहीं है। ये कब से नहीं है? अनादिकाल से नहीं, ये अज्ञात है। हमारी अनुभूति हमारे लिए अज्ञात है, और जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तो पर विषय के संबंध में जो जो बातें अज्ञात हैं उनको जानना भी संभव नहीं है। समझ में आया? हम अपने को भी नहीं जानते और पर को भी नहीं जानते, ऐसी स्थिति हो गई है। पर को जानते हैं तो जो प्रत्यक्ष है उतना ही जानते, जो परोक्ष है वो हमारे लिए अज्ञात है, उसको नहीं जानते हम। जो परोक्ष है वो अज्ञात है, जो प्रत्यक्ष है उतना ही हमारा ज्ञान का विषय बन रहा है और उतना ही हम जानते हैं। इसका अर्थ ये निकला कि जो सामने है उसको जानते हैं और जो सामने नहीं है, परोक्ष में है, उसको बिल्कुल नहीं जानते, और वह विषय पर विषय भी हमारे लिए अज्ञात है, और हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, हमारा विषय भी अज्ञात है। इसलिए ये बताना पड़ेगा कि हम अपने को भी नहीं जानते, स्व विषय को भी नहीं जानते और पर विषय को भी नहीं जानते। और स्व पर विषय को जानने से पहले स्व को जानना पड़ता है, यह अज्ञात को ज्ञान प्राप्ति का प्रथम उपाय है। अज्ञात के ज्ञान प्राप्ति का प्रथम उपाय क्या है? तो हम अपने को जाने, तो पर को जाना जा सकता है। हम पर वस्तुओं को संपूर्ण नहीं जान पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? संपूर्ण नहीं जान पा रहे हैं इसका क्या कारण है? हम अपने को नहीं जानते इसलिए हम पर को भी नहीं जानते। हम अपने को जानने लग जाएंगे तो अपने को ही जानना पड़ेगा, अपने को ही जानने पर का ज्ञान होगा। हम अपने को कैसे जाने, उसकी कला है, केवल अपने को जाने तो केवल ज्ञान होगा। केवल अपने को जाने तो केवल ज्ञान होगा। हम अपने को जानते तो हैं, लेकिन जैसे हम अनादिकाल से थे वैसे ही हम अपने को जानते। उससे भिन्न जो हमारी वास्तविक दशा है उसको हम नहीं जानते। क्या जानते हैं? सहज रूप से किसी ने आपसे प्रश्न किया, आप कौन हो, तो सहसा उत्तर देते हैं। दिखता नहीं हूं क्या? मनुष्य हूं मनुष्य। अरे मनुष्य तो हो, हमारे आंखों के लिए आप मनुष्य ही दिखते हैं, लेकिन कौन हो का मतलब हमारा अभिप्राय था कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या काम करते हैं, कहां से आए हैं, आपका एड्रेस क्या है, ये अभिप्राय है। तो उसका उत्तर ले लो, हम देते हम कोल्हापुर में रहते हैं और हमारा एड्रेस ये है और हम डॉक्टर हैं। बस पूछने वाले ने ये पूछा, पूछने वाले ने भी ये पूछा, पर की दृष्टि से पूछा, स्व की दृष्टि से कोई प्रश्न पूछता ही नहीं। तुम असल में कौन हो? ये तो मुनि महाराज ही पूछ सकते हैं आपसे। लोग जो पूछते हैं वो अलग ही पूछते हैं। लोग बाहरी परिचय पाना चाहते हैं आपका, अंतरंग का परिचय पाना नहीं चाहते। और मुनि महाराज जब आपसे ये प्रश्न करेंगे कि तुम कौन हो, सही बताओ, तो आपको सही बताना पड़ेगा और सही बताने के लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। सही बताने के लिए आपको वचन का अवलंबन लेकर नहीं किंतु प्रवचन का अवलंबन लेकर, प्रवचन यानी भगवान की वाणी, भगवान की वाणी का आश्रय लेना अगर आपको मालूम है, आपने कुछ समझा है, जाना है, वाणी से कुछ संबंध है आपका, वाणी से कुछ अनुराग है, तब तो उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अन्यथा जिसको भगवान की वाणी से कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई परिचय नहीं, कभी सुना नहीं, तो वह मुनि महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यदि उसको प्रवचन का ज्ञान होता है तो अवश्य सही उत्तर देता। क्या देता है? आप भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत दिन से प्रवचन सुन रहे हैं। बोलो, तुम कौन हो, वास्तविक परिचय बताओ। तुम कौन हो, एक ही शब्द में उत्तर देना है। मैं आत्मा हूं, बस ये। मैं मनुष्य हूं, ये भी उत्तर गलत। मैं श्रावक हूं, ये भी गलत। मैं गृहस्थ हूं, ये भी गलत। मैं स्त्री हूं, ये भी गलत। पुरुष हूं, ये भी गलत। ये सब आत्मा के नहीं है। आत्मा स्त्री है क्या? नहीं। आत्मा पुरुष है क्या? नहीं। आत्मा डॉक्टर है क्या? आत्मा इंजीनियर है क्या? नहीं। आत्मा क्या है फिर? आत्मा आत्मा है, आत्मा ज्ञानवान है, जानता है और देखता है। आत्मा का ये कार्य है, ऐसा कार्य करने वाले का नाम है आत्मा। और आत्मा का इतना ही कार्य होता है कि वो जाने और देखे, पर को न जाने, पर को न देखे। और पर दो प्रकार का होता है, भावों की अपेक्षा से भी कुछ पर होता है, भाव की अपेक्षा से भी पर होता है और द्रव्य की अपेक्षा से भी पर होता है। द्रव्य को परद्रव्य माना जाता है, कहा जाता है, और भाव को परभाव कहा जाता है। जो पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं उनको परभाव कहते हैं, और जिसके सहारे से वो हो गए वह सहारा द्रव्य माना जाता है, वो अचेतन होता है। या चेतन भी होता है, पर द्रव्य दो प्रकार का है, चेतन भी है और अचेतन भी है। इनके सहारे से जो हमारे आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन भावों को परभाव कहा जाता है। मैं भगवान का विचार कर रहा हूं, भगवान मेरे मन में है, मेरा आत्मा, मेरे आत्मा का ज्ञान भगवान को विषय बना चुका है, भगवान का चिंतन कर रहा है, तो ये परभाव है या स्वभाव है? विषय किसका बना चुका है? पर का विषय बना चुका है इसलिए ये परभाव है। जब हम स्व को विषय बना करके स्व के संबंध में विचार करेंगे तो ये स्व विचार है। मैं कौन हूं? आत्मा। मेरे में क्या है? ज्ञान और दर्शन। मैं आत्मा एक द्रव्य हूं, स्वयं हूं। मैं स्व को विषय बनाकर उस स्व को, आत्मा को, मैं मेरे ही ज्ञान द्वारा जानने लग गया, देखने लग गया, तो मैं स्वभाव वाला बना, स्वद्रव्य ही अपना विषय हुआ, स्वगुण ही अपना विषय हुआ। मैं ज्ञान हूं, मैं जान रहा हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं ज्ञान के द्वारा अपने को जान रहा हूं, अपने द्रव्य को जान रहा हूं। ये व्यक्ति मेरे साथी है, मित्र है, मैं इनको जान रहा हूं, तो ये कौन से भाव? ये परभाव। क्योंकि पर को जान रहा हूं, पर द्रव्य, पर ज्ञान, पर पर्याय उसको जान रहा हूं। पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्याय को जानते समय मुझे पर का ही ज्ञान हो रहा है और परभाव है ये। हमको परभाव से हटकर स्वभाव का विचार करना है। भगवान का चिंतन करते करते, क्योंकि परभाव है ये, भगवान अपने हैं, ये बात अलग है, भगवान अपने हैं, क्या पराये हैं? अपने। गुरु अपने हैं, शास्त्र अपना है, शास्त्र अपना है, गुरु अपने हैं, भगवान अपने हैं, ये बात अलग है। लेकिन देव, शास्त्र, गुरु के संबंध में जो कुछ भी आप विचार करोगे हमारे ज्ञान के सामने वो विषय बनकर खड़े रहेंगे कि नहीं? ये भगवान है और इस भगवान के ये गुण हैं और उस उन गुणों की ये पर्याय। परद्रव्य, परगुण और पर पर्याय के बारे में जब आप विचार करते हैं तो परभाव उत्पन्न होते हैं, और इन परभावों को उत्पन्न करने के बाद उन गुणों का, उस द्रव्य का, उन पर्यायों का विचार करते करते आप अपने द्रव्य को, अपने गुण को, अपनी पर्याय को विषय बना करके मैं भी तद्वत हूं, मैं भी उसी प्रकार हूं, लेकिन वैसा नहीं हूं, उसी प्रकार हूं लेकिन वैसा अभी नहीं हूं, क्योंकि हमारी वर्तमान पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है। हमारा वर्तमान द्रव्य शुद्ध द्रव्य नहीं है, हमारा वर्तमान ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। तो जहां तक वर्तमान का सवाल है, भावी का नहीं। भावी में आप शुद्ध बन सकते हैं, भावी में आप केवल ज्ञानी बन सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं। आपका भावी पर्याय शुद्ध, गुण शुद्ध, द्रव्य भी शुद्ध, ये प्राप्त होने की क्षमता आपके पास अवश्य है, लेकिन वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से तुम कौन हो? अशुद्ध मानना पड़ेगा ना? मैं वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध हूं, और यदि इस वर्तमान पर्याय में पुरुषार्थ करके इस पर्याय को, द्रव्य को, गुण को मैं शुद्ध बना लूं, तो मैं भी तद्वत बन सकता हूं, उनके समान बन सकता हूं। तो ये अज्ञात का ज्ञान है, अज्ञात का ज्ञान, ये पर का भी है और स्व का भी है। हमने आज तक भगवान के संबंध में उनके द्रव्य, उनका द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायें, इस संबंध में विचार नहीं किया। इसलिए हम मोक्ष नहीं गए, इसलिए हम चतुर्गति में भटक रहे हैं, इसलिए हमारा जन्म कोल्हापुर में हो गया। क्यों हुआ कोल्हापुर में जन्म? अज्ञात का ज्ञान कराने करने का हमने प्रयत्न नहीं किया। अज्ञात को जानो, अज्ञात को, जो आज तक हमने नहीं जाना उसको जानो। हमने बहुत बार पूजा की, लेकिन केवल पूजा की, शब्दों में की, बाहर से की, अंतरंग में प्रवेश करके, भाव तक पहुंचकर भाव पूजा नहीं की, द्रव्य पूजा की। शास्त्र भी पढ़ा तो शब्दों में पढ़ा, उपदेश भी दिया तो शब्दों का उपदेश दिया। हमने अपने भाव श्रुत को नहीं जगाया। भगवान ने जो बोला था उतना ही लिया और उतना ही दे दिया। भगवान ने अज्ञात का ज्ञान करके अनुभूति से बोला था। भगवान ने अज्ञात का ज्ञान करके अनुभूति से बोला था, उनका बोला हुआ वह वचन प्रवचन कहलाया। परंतु हमने उस अनुभूति के द्वारा बोला गया विषय को ले करके अपना पता लगा करके उसको अपने अंदर अनुभूति के द्वारा ले करके हमने किसी को प्रवचन नहीं सुनाया। प्रवचन कैसे सुनाना चाहिए उसके लिए भी भगवान ने बताया, प्रवचन के वचनों को ही ज्यों का त्यों ग्रहण करके ज्यों का त्यों सुनाओगे तो वह प्रवचन नहीं कहलाता। प्रवचन के वचन जो होते हैं उन वचनों में जो सार होता है, तथ्य होता है, उन तथ्यों को समझकर अपनी भावनाओं को जगा करके उन भावनाओं की अनुभूति करके उस अनुभूति के माध्यम से जब आप बोलोगे तब वह प्रवचन कहलाएगा। कितना कठिन है, अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करके और आत्मानुभूति प्राप्त करके उसको बोलना, इसलिए कहा प्रवचन देने का अधिकार केवल मुनि के अलावा और किसी को नहीं है। या तो भगवान प्रवचन दें या तो मुनि महाराज प्रवचन दें, क्योंकि अज्ञात का ज्ञान करने का सामर्थ्य केवल मुनि के पास ही होता है, श्रावक के पास वह नहीं होता। क्या होता है? अज्ञात का ज्ञान करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, आत्मा की वीतराग दशा क्या होती है उस पर्याय की अनुभूति। ये मुनि दशा में हो सकती है कि श्रावक दशा में? मुनि दशा में ही संभव है, श्रावक दशा में क्यों नहीं हो पाती? हाँ, वो केवल श्रोता बन सकते हैं, प्रवक्ता नहीं बन सकते, पात्रता नहीं है। प्रवचन सुनाना चाहते हैं तो पहले अज्ञात का ज्ञान कर लो, ये कहा है। स्व भी अज्ञात है और पर भी अज्ञात है, इन दोनों का ज्ञान कर लो। और पर का ज्ञान पूरा हो या ना हो, लेकिन स्व का ज्ञान तो हो ही सकता है। हम श्रुत केवली बन सकते, लेकिन मुनि महाराज बने बिना श्रुत केवली नहीं बनते, श्रावक श्रुत केवली नहीं हो सकता, मुनि श्रुत केवली होते, देव भी श्रुत केवली नहीं होते, मुनि महाराज ही श्रुत केवली होते, क्योंकि भगवान ने दोनों अज्ञातों का पता लगाया है। जो पर है उस सब को पता लगाया, लोक अलोक चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को पता लगाया। किसके द्वारा? अपने ज्ञान के द्वारा। उनके पास ऐसा ज्ञान कहां से आया जो सबको पता लगा सके, लोकालोक को पता लगा सके? ऐसा ज्ञान कहां से आया उनके पास? आत्मा में ही था ना, वही विकसित हुआ ना, किंतु पहले नहीं था अब है, ऐसा क्यों? हाँ, ज्ञानावरणी कर्म का बंधन में था वह ज्ञान। जब तक ज्ञान बंधन में रहता है वह अनंत को पता लगा नहीं सकता, लोक को अलोक को अनंत पदार्थों को पता लगाने की क्षमता ये छद्मस्त ज्ञान में तो है, लेकिन पता लगाते 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 वह यदि स्वभाव में रहता है, स्वभाव के द्वारा पता लगाता है तो पता लग सकता है, पर भाव में रहते हुए उस अनंत को पता लगाना संभव नहीं। क्या संभव है? पर भाव में रहते हुए पता लगना संभव नहीं। स्वभाव को पता लगाने पर और स्वभाव में रहने वाले विकारी भावों को दूर करने पर, स्वभावों में अपने भावों में रहने वाले जो रागादि भाव हैं, उन रागादि भावों को दूर करने पर हमारा ज्ञान वीतराग ज्ञान बन जाता और यही स्वभाव का ज्ञान है, यही अज्ञात का ज्ञान है। स्वभाव का ज्ञान, अज्ञात का ज्ञान यही है। इसका पता हमने आज तक नहीं लगाया। जब पता लगाने की बात चलती थी उस समय में हमारे शरीर ने साथ नहीं दिया। उस समय शरीर कह रहा था थक गया हूं जरा सो जाओ, आत्मा की बातों को सुनाते समय आत्मा को नींद आवे, बहुत अच्छी तरह से नींद आवे, तो फिर स्वभावों को पता लगा सकेगा क्या? नहीं लगा सकता। तो मैं कौन हूं इसको जानने की जिज्ञासा के साथ आप अगर किसी भगवान के मुनि महाराज के प्रवचन को सुन लेते हैं, भगवान के पास बैठोगे तो नींद आएगी नहीं, वो तो समोशरण है, लेकिन यहां आ सकती, आ सकती कि नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। देखेंगे, आज के दिन रात भर जगना और सुबह प्रवचन सुनना, आती कि नहीं आती देखेंगे। आती है, वो आती है, कहाँ जाएगी? ज्यादा टेंशन दोगे तो ज्यादा आएगी, लेकिन समूह शरण में ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्या जादू है वहां, अतिशय ही है। भगवान के समूह शरण में सभा में सभी बैठे हैं तो एक को भी नींद नहीं आती। नींद ही नहीं बल्कि उनको भूख और प्यास भी नहीं लगती। यहां लग सकती? महाराज भोजन का टाइम हो गया है, प्रवचन छोड़ो, तो भूख लगती है तभी तो आप कहते हैं। भूख नहीं लगेगी तो आप कैसे कहेंगे? श्रुत दो प्रकार का होता है, भगवान ने कहा। श्रुत कितने प्रकार का? दो प्रकार का, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत किसको कहें? द्रव्य यानी बाहर का, द्रव्य यानी अचेतन। अचेतन होता है और वह पर से प्राप्त होता है, बाहर से आता है, अपने पास नहीं रहता, पहले से नहीं रहता, बाद में आता है और हमारे लिए उपकार करके चला जाता है, हमारे लिए उपकार करता है और वह उपकार करके आत्म कल्याण करके हमारे लिए हितैषी बन जाता। द्रव्य श्रुत किसको कहें? भगवान के जो वचन हैं वे प्रवचन कहलाते हैं, वे सामान्य मनुष्य जो बोलते हैं ऐसे वचन नहीं है, वे अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करके, अनुभूति प्राप्त करके निकलने वाले वचन है, इसलिए वे प्रवचन हैं। भगवान के वचनों को प्रवचन क्यों कहा? दोनों अज्ञात वस्तुओं को पता लगा करके, पूर्णतः पूर्णतः पता लगा करके वो बोलते रहते हैं, इसलिए उनके वचनों को प्रवचन कहा। लेकिन मुनि महाराज के वचनों को प्रवचन नहीं कहा, उपदेश कहा। प्रवचन को हमने ग्रहण किया, प्रवचन भगवान का होता है, और उस प्रवचन का विस्तार व्याख्यान किया, विस्तार किया, समझाया, अज्ञात को ज्ञान करके, अनुभूति करके, हमने भगवान के उन प्रवचनों के वचनों को चिंतन करके सुनाया, तो वह उपदेश कहलाया। अब प्रवचन कहते हैं तो उपचार से कहें कोई बात नहीं, मुनि महाराज के उपदेश को प्रवचन भी कहा जा सकता है औपचारिक रूप से, व्यवहार से। जैसे राजा का बेटा भी राजा, राजा का बेटा भी राजा है। राजा कहाँ है? अभी तो मुकुट नहीं पहना है, सिंहासन पर नहीं बैठा है, राजा कहाँ है? अभी तो आदेश भी नहीं दे रहा है किसी प्रजा को, राजा कहाँ है? लेकिन वही भविष्य में राजा बनने की क्षमता रखता है, वही बनने वाला है, इस अपेक्षा से वह राजा। अभी उपचार से राजा, कल के दिन मुकुट पहनेगा, सिंहासन पर बैठेगा, प्रजा को आदेश करेगा, तो वो साक्षात राजा। तो मुनि महाराज भी उपचार से प्रवक्ता, प्रवचन देने वाले। मुनि महाराज के भी वचन प्रवचन है। कुंद कुंद आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम प्रवचन सार। प्रवचन सार का मतलब भगवान के वाणी का सार। भगवान की जो वाणी होती है उसका नाम प्रवचन। उस प्रवचन में जो सारभूत विषय थे उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया गाथाओं के माध्यम से। प्रवचन को समझकर उसके सार को लिखा। जैसे आप फलों का रस निकालते, आम का रस निकाला, लेकिन पूरा आम रस नहीं था, उसमें कुछ फेंकने वाला भी विषय था, आपने उसको निचोड़ दिया, रस रस नीचे गिरा और बाकी सब छोड़ दिया। कुंद कुंद आचार्य ने प्रवचन सार में कुछ ऐसा ही किया है। भगवान से आम खरीदा और हमको रस बना करके दिया, इसलिए उस ग्रंथ का नाम प्रवचन सार रखा गया। सार यानी रस, जो उसमें मुख्य मुख्य बातें हैं, जो प्रयोजनभूत हैं, आत्म कल्याण के लिए आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं, उन सार को लेकर के बाकी सब छोड़ दिया, क्योंकि बाकी तो बहुत सारा था वहां, वो सब लेकर के क्या फायदा, और ले भी नहीं सकते क्योंकि वह अनंत है, अनंत को हम निचोड़ नहीं सकते, कहां तक निचोड़ेंगे। तो कुछ विषय जो मुख्य थे उनको ले लिया, वो आम थे, मुख्य मुख्य विषय आम की तरह थे, उन मुख्य विषयों को निचोड़ दिया, उसमें से भी अर्क निकाला, अर्क निकाल करके गाथाओं को बनाया, वह हमारे लिए प्रवचन सार कहलाया। आज उस ग्रंथ को हम यदि पढ़ते हैं तो स्व और पर का ज्ञान हुए बिना रहता नहीं। वे कुंद कुंद भगवान कहते हैं जो भगवान को उनके द्रव्य गुण और पर्यायों से जानता है, वह उसका मोह विलय को प्राप्त होता है और वह खुद को भी जानने वाला बन जाता। देखो कितनी बड़ी बात कही, भगवान की आत्मा को जानने वाला कैसा जानेगा? उनका गुण वीतराग, उनका द्रव्य वीतराग द्रव्य, उनकी पर्याय वीतराग पर्याय, द्रव्य भी वीतराग, गुण भी वीतराग और पर्याय भी वीतराग। और केवल ज्ञान ही सही ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो पर है, और जो बहुत सारा अज्ञात है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा था, उनका ज्ञान का विषय वो बन गया, भगवान के ज्ञान का विषय बन गया। आप क्या यहां बैठे बैठे लोक और अलोक को जान सकेंगे? नहीं, आप नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सक रहे हैं? क्योंकि हमने अभी अपने को पता नहीं लगाया। जो हम हैं वे ही कौन हैं, कैसे रहना चाहिए उसको ये पता नहीं लगाया। हम अनादि काल से राग पर्याय की अनुभूति ही कर रहे हैं। हम अपनी अनुभूति कहाँ कर रहे हैं? राग पर्याय की ही अनुभूति कर रहे हैं। और ये राग पर्याय की अनुभूति पर द्रव्यों में मोहित होने के कारण से है। पर द्रव्यों से मोहित होते होते बड़ी बात कही जा रही है। पर द्रव्यों में मोहित होते होते आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होना संभव है, किंतु आत्मानुभूति होना बिल्कुल संभव नहीं है। स्व जो अज्ञात है उसको ज्ञात करना संभव नहीं है, उसका ज्ञान करना संभव नहीं है। उसी अज्ञात को ज्ञान करना है, ज्ञात बनाना है, इसलिए उस पर आपने श्रद्धा की। शुद्ध आत्मा की अनुभूति पर जो आपकी श्रद्धा है, वह श्रद्धा ही आपका सम्यक दर्शन है, वो आत्मानुभूति नहीं, आपका लक्ष्य बन गया। जब आप श्रद्धावान बन जाते हैं, उस समय सर्व सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। प्रथम सम्यक दर्शन की जो उत्पत्ति होती है वो सराग होती है। वीतराग सम्यक दर्शन डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता। पहला सराग सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, इसके अनंतर वीतराग सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अज्ञात का ज्ञान करना है मुझे, ये उत्साह श्रद्धा के साथ जब प्रारंभ हो जाता है, तब सर्वप्रथम आपको व्यवहार सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। व्यवहार सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन का कारण है और वीतराग सम्यक दर्शन कार्य है। कारण के सिद्धि के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। पहले कारण को सिद्ध कर लो, फिर कार्य की सिद्धि अपने आप होगी। हमारा ज्ञान अज्ञात को अभी प्राप्त नहीं कर चुका है, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर चुका है, उसकी अनुभूति प्राप्त नहीं कर चुका है, क्योंकि हमारे पास अभी सराग सम्यक दर्शन है। सराग सम्यक दर्शन के काल में भी आत्मा राग पर्याय को ही जानता है, वीतराग पर्याय को नहीं जानता। वीतराग पर्याय स्व पर्याय है और राग पर्याय प्रभाव पर्याय, प्रभाव रूप पर्याय। जब तक हमारे पास सराग सम्यक दर्शन रहेगा, सराग सम्यक ज्ञान रहेगा, सराग चारित्र रहेगा, ये राग ही प्रभाव है और प्रभाव की अनुभूति आत्मानुभूति नहीं है। वह परभावानुभूति है, आत्मानुभूति इसको कह नहीं सकते। भगवान का प्रवचन सुनते सुनते जिसको अपना ज्ञान हो जाता है उसका जीवन सफल बन जाता है। भगवान के द्रव्य गुण और पर्यायों को चिंतन करते करते हमारे लिए जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो कौन सा? सराग। सराग सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उनका चिंतन किए बिना उन पर हम श्रद्धान नहीं कर सकते। देव का श्रद्धान करना हो तो देव के गुणों को पता लगाना पड़ेगा, गुणों का चिंतन करना पड़ेगा। देव के द्रव्य का पता लगाना पड़ेगा, वो द्रव्य किस प्रकार का है इसका चिंतन करना पड़ेगा। द्रव्य वीतराग, गुण वीतराग और पर्याय भी वीतराग, भगवान के पास तीनों वीतराग हैं और हमारे पास तीनों वीतराग नहीं हैं, हमारे पास तीनों सराग हैं। सराग क्यों हैं? क्योंकि भगवान के द्रव्य गुण पर्याय पर हमने श्रद्धान की है तो उसके माध्यम से हमारे लिए जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ ये सराग सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। अब कहते हैं इसी सराग सम्यक दर्शन के माध्यम से हमारा मोह नष्ट हो सकता है। जो मोह हमारी अनुभूति से हमें वंचित रख रहा है, स्व का मोह ही स्व के आत्मानुभूति से वंचित रख रहा है, रोक रहा है, उस मोह को भी प्रलय करना हो, उस मोह को भी नाश करना हो, तो सबसे पहले आत्मा भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करो और करते करते श्रद्धावान बन जाओ तो सराग सम्यक दर्शन होगा। सराग सम्यक दर्शन होगा तो दर्शन मोहनी और अनंत अनुबंधी इन दोनों का विनाश होगा। ये सराग परिणामों से ही होगा, वीतराग परिणाम जरूरत नहीं। यहाँ भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से अनुराग का मतलब क्या है? राग भाव है क्या? नहीं। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान का मतलब क्या है? ये राग भाव रूप श्रद्धान है क्या? नहीं। तो ये सराग है, श्रद्धा सराग है, क्योंकि भगवान के गुणों से अनुराग हुआ इसलिए सराग है। और यह सराग सम्यक दर्शन अज्ञात का ज्ञान नहीं कराता, ज्ञान कराने के लिए आपका सहयोग दे सकता है, सहयोग दे करके निकल जाएगा, आत्मानुभूति नहीं कराएगा, सहयोग दे करके चला जाएगा। अब हम आत्मानुभूति करना चाहते हैं तो भगवान का परिचय तो प्राप्त हो गया, प्राप्त होने पर ही तो हमें सराग सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब हमको क्या करना है? हम अब अपने सराग सम्यक दर्शन के माध्यम से अब वीतराग सम्यक दर्शन प्राप्त करें। कैसे करें? तो हमारे पास अभी मोह बचा हुआ है। कौन सा मोह बचा हुआ है? यही तो मोह है। कौन सा मोह? तो देखो, यदि आप चतुर्थ गुण स्थान में हैं, तो दो प्रकार का मोह बचा हुआ है। भगवान से भी मोह बचा हुआ है और पर पदार्थ सांसारिक झंझटों से, सांसारिक झंझट के निमित्त भूत तो 10 परिग्रह हैं, इन परिग्रहों से मोह बचा हुआ है। यदि मुनि हैं, तो उनके पास एक ही मोह बचा हुआ है। वे भगवान के प्रति अनुराग रखते हैं, ये अनुराग उनका सराग सम्यक दर्शन है और उनको एक ही छोड़ना है। भगवान के अनुराग को भी छोड़ करके निज आत्मा का, वीतराग आत्मा का आश्रय लेना आवश्यक है। जब तक हम भगवान की भक्ति में रहेंगे आत्मानुभूति नहीं कर सकेंगे। अज्ञात का ज्ञान अनुभूति नहीं होगी। किसी पदार्थ को राग के साथ देख रहे हैं तो आप अपनी अनुभूति नहीं कर सकते, राग से देख रहे हैं। वीतरागता से देखो तो फिर अनुभूति भी कर सकते हो। पर को जानो या स्व को जानो, जानते समय प्रशस्त राग भी न हो और अप्रशस्त राग भी न हो। बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। पर को जानते समय या स्व को जानते समय जानो, जानने का स्वभाव है आत्मा का, आत्मा का ज्ञान जाने, लेकिन किसी भी पदार्थ को वह प्रशस्त राग से भी न जाने और अप्रशस्त राग से भी न जाने, इन दोनों से ऊपर उठकर पदार्थ को जाने। पर को जान रहा है तो चलेगा, स्व को जान रहा है तो चलेगा, लेकिन राग रहित होकर के जाने, राग रहित होकर। राग रहित होकर यदि आप पर को भी जान रहे हैं तो पर को जानने के साथ साथ स्व को भी जान रहे हैं। पर को जानने के साथ साथ स्व को भी जान रहे हैं, क्योंकि स्व को इसलिए जान रहे हैं कि स्व में राग नहीं है, इसलिए स्व की अनुभूति हो रही है। लेकिन ये किसको संभव? एक मुनि को संभव, गृहस्थ अवस्था में गृहस्थ को संभव नहीं है, एक मुनि को संभव है। क्योंकि मुनि महाराज अप्रशस्त राग से परे हैं और गृहस्थ निरंतर अप्रशस्त में लगे हुए हैं। दस प्रकार के परिग्रहों को रखते हुए वह जब भी उस परिग्रह में जाएगा उनका ज्ञान अप्रशस्त रहेगा क्या प्रशस्त? अप्रशस्त रहेगा। तो ये अप्रशस्त राग तो प्रशस्त राग के लिए बाधक है, ये प्रशस्त होने नहीं दे रहा है। ये राग प्रशस्त में ढले सबसे पहले, यानी केवल ज्ञान का विषय, जानने का विषय, देव शास्त्र गुरु धर्म शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि रहे, षटकर्म रहे, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान, ये प्रशस्त राग है। लेकिन इसमें उलझते उलझते गृहस्थ का मन अप्रशस्त राग में भी रंजित होकर के आता है कि नहीं? क्यों जा रहा है वहां? क्योंकि स्वामित्व है, मूर्छा भाव है, इस मूर्छा भाव का त्याग अभी तक किया नहीं। स्वामित्व को छोड़े बिना क्या अप्रशस्त राग जा सकता है? ऐसा भी कोई मार्ग है क्या कि स्वामित्व को छोड़े बिना भी हम पूर्णतः अप्रशस्त राग को हटा सकते हैं? ऐसा कोई रास्ता नहीं। राग राग है, वह जब भी पदार्थों को जानता है तो स्वामित्व के साथ ही जानता है, और इसलिए मोक्ष मार्ग में स्व को जानने वाले जीवों के लिए भगवान ने बताया स्व अज्ञात है। उस अज्ञात का ज्ञान और अनुभूति चाहते हो तो जिनके ऊपर तुम अपना अधिकार जमाए रखे हो वो अप्रशस्त रागादि भावों की उत्पत्ति में निरंतर कारण बनते हैं, वे आपको अप्रशस्त रागादि भाव प्रशस्त भी होने नहीं दे रहे हैं। शुद्ध का तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें प्रशस्त भी नहीं होने देते, उसको रोको। पर को जाने, स्व को भी जाने, ज्ञान वीतराग बनकर जाने, उनको गेय को केवल गेय बनकर जाने, रागी बनकर गेय को न जाने, वीतरागी बनकर गेय को जाने तो उस वक्त पर का भी ज्ञान होगा, स्व का भी ज्ञान होगा, वीतरागता की अनुभूति के साथ पर को भी जानेगा और स्व को भी जानेगा। छठे गुणस्थान में भी नहीं है, निर्वृत्ति में है। निर्वृत्ति के सप्तम गुणस्थान में आत्मानुभूति है, प्रवृत्ति में आत्मानुभूति नहीं है। तो इस स्व अज्ञात है, वो क्या है? वीतराग आत्मा अज्ञात है अनादिकाल से। वीतराग आत्मा अज्ञात है, उस अज्ञात का ज्ञान करना है आपको और अनुभूति में अनुभूति भी करना है। तो रास्ता क्या है? एक गृहस्थ के लिए क्या रास्ता है और एक मुनि के लिए क्या रास्ता है? मुनि भी बोलते समय प्रवृत्ति के काल में अज्ञात का ज्ञाता नहीं है। अज्ञात का ज्ञाता नहीं है। आत्मा कैसी है इस समय आपने प्रश्न किया, और इस समय के आत्मा को हम आत्मा को बताने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए, तब उस पर्याय को, उस गुण को, उस द्रव्य को बता पाएंगे। हमने कल के दिन में भी आत्मा में गया था, एक घंटे पहले भी गए थे, लेकिन एक घंटे पहले के पर्याय अलग है और वर्तमान पर्याय अलग है। आप जस्ट पूछ रहे हैं आपके आत्मा क्या अनुभव कर रही है, तो इस समय मुझे कहना पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आत्मा में वीतरागता की अनुभूति नहीं है, वो अज्ञात है। वर्तमान में क्योंकि राग पर्याय है, इस समय में वीतराग पर्याय भी हो सकती थी, लेकिन वो अज्ञात है, ही नहीं वर्तमान में। वर्तमान में राग पर्याय है, इस राग पर्याय की अनुभूति को तो मैं बता सकता हूं कैसा क्या है। मैं उपदेश कर रहा हूं तो ये परिणाम वीतराग है क्या राग है? राग, क्योंकि यहां करुणा है, यहां अनुकंपा है, यहां संज्वलन कषाय के उदय में प्रशस्त राग रूप हो चुके हैं परिणाम। ये प्रशस्त रागानुभूति ही मैं बता पाऊंगा, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल आपका स्वरूप बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। वर्तमान में मैं क्योंकि वीतराग पर्याय में नहीं हूं, तो उस वीतराग पर्याय को अभी कैसे बता सकता। अब जो मेरी वीतराग पर्याय भावी में आ सकती है उसका बता सकता हूं, वो वीतराग रहेगा। पर वीतराग में जब भी जाऊंगा तब मैं न बोलूंगा, न विचार करूंगा, न किसी पर अनुकंपा, न किसी को अनुराग दृष्टि से देखूंगा। अपने ज्ञान को मैं ज्ञाता दृष्टा बनाऊंगा। ज्ञाता दृष्टा का मतलब राग को हटाऊंगा, राग को हटाकर अपने ज्ञान की प्रवृत्ति को पर पदार्थों में ले जाऊंगा या निज में ले जाऊंगा, स्व को विषय बना लूंगा या पर को विषय बना लूंगा, स्वद्रव्य को विषय बना लूं, तब भी मेरा ज्ञान राग से रहित है। पर की ओर भी ले जाऊंगा तब भी राग से रहित है। ये राग रहित ज्ञान आत्मानुभूति वाला ज्ञान कहलाता है, जो मुनि के पास भी सतत नहीं रहता, निर्वृत्ति के काल में रहता है, प्रवृत्ति के काल में ये नहीं रहता। और श्रावक के जीवन में तो एक सेकंड के लिए भी ये आने वाला नहीं है। जब तक अप्रशस्त राग की उत्पत्ति के कारणों को नहीं हटाएंगे, आप त्याग नहीं करेंगे, संकल्प पूर्वक त्याग, ऐसा त्याग भी नहीं कि वस्त्र आदि परिग्रहों को मैं एक घंटे के लिए त्याग देता हूं। एक घंटे के लिए भी छोड़ोगे तो प्रशस्त राग भी उपलब्ध होने वाला नहीं है, पूर्णतः उसकी परिपूर्णता नहीं रहेगी। ये तो प्रैक्टिस रहेगा, मैं एक घंटे के लिए त्याग कर रहा हूं तो एक घंटे के लिए राग को छोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं, राग छूटा नहीं। आप भले ही सामायिक में बैठ जाओ या सामायिक में नहीं भी बैठो, तो भी वह अभ्यास है, अभ्यास के कोटि में आएगा। अभ्यास के काल में राग छूटता नहीं, राग को छोड़ने का प्रयत्न चल रहा है, राग को छोड़ने के लिए संस्कार दिए जा रहे हैं और संस्कार के काल में राग छूटता नहीं। गुरु आपको उपदेश दे रहे हैं और निर्ग्रंथ मुनि बनने का संस्कार डाल रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से संस्कार दे रहे हैं, तो क्या मुनित्व की अनुभूति हो रही है आपको? संस्कार संस्कार है, ये थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं। जो मुनि के पास प्रशस्त राग है उसको भी पाना संभव नहीं ग्रस्त अवस्था में। वीतराग ज्ञान को तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। प्रशस्त राग भी जग नहीं सकता जब तक श्रावक अवस्था में है। श्रावक कहते किसे? जो परिग्रह से युक्त हो वही श्रावक। और ये गृहस्थ है, गृहस्थ का मतलब क्या? परिग्रहस्थ, परिग्रह में अस्त, परिग्रह में अस्त यानी डूबा हुआ, व्यस्त। हाँ, अस्त के अलावा फिर वो अंदर जाकर पुनः व्यस्त, और उसी में मस्त। हाँ, इसलिए सुस्त। फिर इतना सब कुछ है तो प्रशस्त कहाँ है और वीतरागता कहाँ है? ये क्या वीतराग? प्रशस्त राग भी नहीं है और आत्मानुभूति भी नहीं है, वीतराग आत्मानुभूति वो भी नहीं है। ठीक है, फिर भी इधर आकर्षण तो है, ये आकर्षण काम में आएगा बाद में, घबराओ नहीं, ये बहुत काम देने वाला है। हमारी पास होने का कोई गारंटी नहीं है, ऐसा मत समझो। आज न कल गारंटी है, आज न कल गारंटी है। और आज की पर्याय, आज की पर्याय है, कल की पर्याय, कल की पर्याय है, और एक साल की बाद की पर्याय, एक साल बाद की पर्याय है, और अगले भाव में भी यदि आपको ये संस्कार साथ चलते हैं तो ये संस्कार ही वहां काम में आने वाले हैं। ये संस्कार, ज्ञान के संस्कार ही वहां काम में आएंगे और आप आकर्षित रहेंगे इस बात से और वहां जग जाएंगे। जग जाएंगे तो ट्यूबलाइट छक लग जाएगा। आएगा समय, आएगा, प्रतीक्षारत रहो, जुड़े रहो, सुनते रहो, सुनने में प्रमाद मत करो, संस्कार डालने में आलसी मत बनो, ऐसा ही प्रवचन सुनते रहो। आत्मा पार हो जाएगी, आज न कल पार होगी संसार से। पार होने के लिए तो पूजा कर रहे हो ना, फिर 10 दिन ही क्यों सीमित कर रहे हैं इसको? प्रवचन, सत्संग और स्वाध्याय ये तो निरंतर चलना चाहिए, भले ही पूजा 10 दिन के लिए साल भर में हो। निरंतर चलना चाहिए। क्या निरंतर? एक स्वाध्याय और प्रवचन सुनना, ये निरंतर 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 चलना चाहिए। पूजा किस लिए? वो भी आत्मा को, अज्ञात को ज्ञात बनाने के लिए है ना, वो भी एक साधन है, लेकिन उससे बढ़कर के साधन ये है। इसमें तो गुरु संस्कार डालते हैं, उसमें तो आप सेल्फ डिपेंड होकर के एक एक द्रव्य को इधर से इधर उठा रहे हैं, थोड़ा सा भावना भा रहे हैं, इतना ही हो रहा है, इससे ज्यादा क्या हो रहा है? पूजन से ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता। मैं द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का बता रहा था। द्रव्य श्रुत भगवान की तरफ से मिलता है और भाव स्रोत को हमें जगाना पड़ता है। इन दोनों में क्या फर्क है, द्रव्य स्रोत में और भाव स्रोत में? देखो, द्रव्य स्रोत भगवान के द्वारा दिया गया पौद्गलिक शब्दों की रचना है। इन शब्दों को चिंतन करके उसमें से अर्थ निकाल करके, अर्क निकाल करके पी लेना और फिर डकारना। ये जो डकार आते हैं इसको भावश्रुत कहते, डकार को भावश्रुत कहते। पर भगवान के प्रवचनामृत को पी करके चिंतन करने पर जो डकार आते हैं उसका नाम भावश्रुत। आपने पिया और चिंतन नहीं किया तो भावश्रुत की उत्पत्ति नहीं हुई। भावश्रुत की उत्पत्ति के लिए द्रव्य श्रुत सहयोग देता है। ये जो आप प्रवचन सुन रहे हैं ये प्रवचन अंदर जा रहा है, लेकिन ये द्रव्य के रूप में अंदर जा रहा है अभी। लेकिन अंदर जाने के बाद आप रास्ते में भी चिंतन करते हैं, घर में भी चिंतन करते हैं, और चिंतन करके उसमें से कुछ तो सार निकाल करके जो आचरण में ला करके आचरणवान बन जाते हैं। चिंतन में आने के बाद आचरण आता है ना, तो चिंतन आने के बाद जो परमार्थ की सिद्धि के लिए, भौतिक सिद्धि के लिए नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए जब इन द्रव्य वचनों का, द्रव्य श्रुत का उपयोग आप भाव श्रुत के रूप में लेते हैं, चिंतन करते हैं परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए, कर्म निर्जरा के लिए जब इसका उपयोग करते हैं, तब भाव श्रुत जगता है। भाव श्रुत तो सोया हुआ रहता है, होता ही नहीं अपने पास, भाव श्रुत होता ही नहीं, श्रुत होता है, श्रुत होता है, वो भाव रूप भी रहता है। लेकिन जो भाव श्रुत परमार्थ की सिद्धि में सहयोग देता है, अज्ञात को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसकी अनुभूति के लिए जब हम प्रयत्नशील होते हैं, उस समय भावश्रुत जगता है। परमार्थ की सिद्धि के लिए जो कुछ भी करो वो भावश्रुत। और इन प्रवचन को सुन करके प्रवचन ही करते चले गए तो भावश्रुत नहीं है, तो द्रव्यश्रुत है केवल। आप चिंतन कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भावश्रुत नहीं जगा। क्यों? चिंतन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पर के लिए कुछ सुनाना है। पर को सुनाने के लिए चिंतन चल रहा है तो भी ये भावश्रुत नहीं है। स्व कल्याण के लिए जब आप चिंतन करेंगे इन द्रव्य श्रुत के वचनों का, स्व कल्याण के लिए चिंतन करेंगे, स्वयं के पेट भरने के लिए, आत्मा भूखी प्यासी अनादिकाल से, इसको खिलाया नहीं, वीतरागता का भोजन जरा भी नहीं कराया, उस वीतराग भोजन को कराने के उद्देश्य से जब हम इन द्रव्य श्रुत के वचनों को चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, उसी क्षण भाव श्रुत की उत्पत्ति होगी। उदाहरण, आपने प्रवचन सुना, हमने 4 महीने तक प्रवचन सुना, कम से कम मैं श्रावक हूं, सम्यक दर्शन तो धारण कर लूं, ये विचार आ गए तो अज्ञात को सम्यक दर्शन का ज्ञान नहीं था, वो अज्ञात में था, मिथ्यात्व की ही अनुभूति होती आई है, ये प्रत्यक्ष था, इसका तो अनादिकाल से हमने अनुभव किया है, मिथ्यात्व की अनुभूति अनादिकाल से हुई है, एक इंद्रिय पर्याय में, द्वि इंद्रिय पर्याय में, जहां भी रहे 84 लाख योनि में, मिथ्यात्व की ही अनुभूति हो चुकी है। सम्यक दर्शन का अनुभव आपने कब किया? तो वो अज्ञात है आपके लिए, अज्ञात का ज्ञान करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए तैयार हो जाओ, तो सम्यक दर्शन आपके लिए परमार्थ है। परमार्थ का लक्ष्य बना करके यदि इन वचनों का चिंतन करने लगते हैं और चार महीने के उपरांत आपको ख्याल में आया कम से कम हमको सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए, अब आप लौट गए हैं, अपनी ओर लौट गए हैं, ये आत्मा के उद्देश्य से भाव जगने लगे हैं। सम्यक दर्शन का व्याख्यान सुना और सम्यक तो का उपदेश पर को ही दिया, तो स्वयं को सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। आपने रसोई घर में जाकर के लाड़ू बनाया, गुलाब जामुन बनाया, जलेबी बनाया, सब पकवान बनाया, थाली में परोस दिया, स्वयं एक भी नहीं खाया और दूसरे को दे दिया, तो क्या उसकी बनाते समय उसकी अनुभूति आएगी? खाने पर आएगी ना। तो अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान ने दिया है, इसको हमें खाना है, अपने उद्देश्य से ये मिले हैं ऐसा समझकर अपने लिए प्रयोग करें, तो द्रव्य श्रुत भाव श्रुत की उत्पत्ति में कारण बनेगा और यह भाव श्रुत ही हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसा कल्याणकारी भाव श्रुत को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। भाव श्रुत की उत्पत्ति के लिए ही ये उपदेश दिया जा रहा है। द्रव्य श्रुत को पकड़ो, पास में रखो और परमार्थ को ध्येय बनाकर दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की ओर बढ़ो, तो निश्चित रूप से भावस्रोत की उत्पत्ति होगी, वह स्वपर कल्याणकारी होगी। फिर आप अपनी आत्मानुभूति से पर को कुछ बता सकोगे, अज्ञात को भी बता सकोगे और ज्ञात को भी बता सकोगे, दोनों तरह से बता सकोगे। तो मैं कहना चाहता हूँ एक बात अंत में, चार महीने तो इतने प्रवचन हो गए, इससे क्या करोगे आप? आत्म कल्याण करोगे या संसार में भटकते रहोगे? तो आत्म कल्याण का प्रथम साधन क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बारे में बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो और उसका पालन करने का प्रयास करो और फिर प्रतिमाधारी भी बनो। संसार में दूसरे को ढकेलने का प्रयत्न मत करो, दूसरे का भी कल्याण हो ये विचार करो, स्वयं भी उसमें मत पड़ो। घर को आश्रम बनाओ, अब हो गया ना 50 साल, क्या करना, अब क्या संसार करने जा रहे हैं, क्या इंद्रिय सुख भोगने जा रहे हैं, बहुत हो गया। अब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के घर में जो अपने बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा दे दो, तुम भी अपना कल्याण करो, कल्याण करने में ही सुख है, मोक्ष मार्ग में जाकर के तुम जो करना चाहते हैं करो, हम नहीं कर पाए कम से कम आप करो। दूसरे को खींच करके संस्कार संसार में नहीं डालना, ये आदत पड़ गई है आपको, है? खींच खींच करके संसार में डाल देते हैं, ये कैसी आदत? ये अज्ञात का ज्ञान न होने के कारण से पूर्वी पासुन परंपरा चल रही है। एक ही ध्येय समझते हो आप कि अपने बच्चों को संसार में डाल देना, बच्चा मोक्ष मार्ग पर निकलना चाह रहा है और जबरदस्ती खींच रहे, वो स्वयं पढ़ना चाह रहा है संसार में तो बात अलग है, उसको डालो। लेकिन जो आत्म कल्याण करना चाहता है उसको जबरदस्ती मत करो, उसको जबरन मत करो, बहुत कर्म बांधोगी, ऐसा मत सोचो, उसको गुरु बनाओ, तुम शिष्य बनो। सही में गुरु होता है, आप तो सही में नहीं बन पाए कोई बात नहीं, परंतु जो बन सकते हैं उसको सही में बनाओ, तुम शिष्य बनो, उसको गुरु बनाओ। एक घर में एक गुरु तो अवश्य होना चाहिए, वो दीक्षा ले या न ले, मोक्ष मार्ग पर निकले या न निकले, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने में क्या दिक्कत है, नुकसान है क्या? और उसको शादी कर लिया, संसार में डाल दिया, कल कुछ हो गया, वो जिम्मेदारी किसकी? फिर वो रोएगा क्या? नहीं, हमारे माँ बाप ने सुना नहीं और हमको ऐसे ढकेल दिया, अब मुझे भोगना पड़ रहा है, वो आपको लेकर के दुखी होगा कि नहीं? ये होता ही है, بہت سے رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم کو ڈھکیل دیا، اب میں کیا کروں، ایسے کر دیا۔ تو ماتا پتا اتنے بھینکر پاپ کرم باندھ لیتے ہیں کہ ان کو آگے جا کر کے کون سا کیسا کرم پھل دے گا معلوم۔ ان کو دیکشا کے جب بھاو آئیں گے، آتم کلیان کے بھاو آئیں گے، تب اس پرکار کے وگن اپستھت ہوں گے کہ وہ چارتر موہنی اور انترائے کرم، لاوانترائے کرم آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں، سنکٹ میں پڑنا پڑتا ہے۔ سبھی جیو سوتنتر ہیں، اس کو پرتنترتا مت دیو، جو جیسا کرنا چاہ رہے ہیں ویسا کرنے دو، دھرم کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں اتنا چنتا کرتے ہیں، کیوں پلے پاسن ایسی بدھی بنا کے رکھے ہیں، بدھی میں جنگ لگی ہوئی، جنگ جنگ۔ تو دیکھو ٹائم ہو گیا ہے، میں کیا بتا رہا ہوں، گھر ایک آشرم بنے، پوتر بنے۔ تو گھر اگر آشرم بن گیا تو گھر میں دھرم وراجمان رہے گا، اور دھرم وراجمان رہے گا دھرمو رکشتی رکشتا، وہ دھرماتما کبھی بھی پھسلنے والا نہیں ہے۔ نیا آشرم مت بناؤ، گھر کو آشرم بناؤ۔ نیا آشرم دیوالے مت کھڑے کرو، پرتیک شراوک کا گھر آشرم بنے، اور جب تک گھر آشرم نہیں بنتا تب تک وہ گھر سنسار کا گھر ہے۔ سب کو آجیون برہمچری ورت لے کر کے رہنا چاہیے۔ کیا ہو گیا نا، اب دو بچے ہو گئے، لائن پر لگنے والے ہیں، ان کو یا تو موکش مار پر لگاؤ یا تو شادی کرو، لیکن اس کے اچھا کو دیکھ کر کے کام کرو۔ وہ اگر نہیں چاہتا ہے تو زبردستی پھنسنا بہت بڑا پاپ ہے۔ اس کی بھاوناؤں کو سمجھو۔ اور آچار شری تو کہہ رہے ہیں دکشن کے تو کوئی آتے نہیں، دکشا لینے آتے نہیں، سنگ میں آتے نہیں، اور مہاراج ہمارے طرف مہاراجوں کو اور بھیجو، تو مہاراج کے پاس مہاراج ہے کہاں؟ کولہا پور سے کوئی جائیں گے تو وہاں سے کوئی آئیں گے، تو یہاں سے دیں گے نہیں تو وہاں سے آئیں گے کیسے؟ جو آپ کے گھر کے کیا بولے کولہا پور کا وہی ہو، نہیں کولہا پور میں بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ آچارش نے اس بار کہا درشن کے لیے گئے تھے آپ لوگ، نویدن کیا مہاراج ہماری طرف سے مہاراجوں کو بھیجو، تو انہوں نے کہا ہماری طرف تم ایک اپنے بیٹے کو بھیجو یا اپنی بیٹی کو بھیجو، تو ہم یہاں سے ایک مہاراج کو بھیج دیتے ہیں، نہیں تو وہ بھیجتے رہیں گے تو وہ خالی ہو جائیں گے، وہ کیا کریں گے پھر؟ سوچنا ہے، چنتن کرنا بہت مہتوپورن ہے۔ دکشن میں جین دھرم سوکھ گیا ہے، ریگستان بن گیا ہے، اس کو پنہ ہرا بھرا کرنا ہے، گنگا بہنا بہانا ہے اور ہرا بھرا کر کے رکھنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو دھرم کے مارگ پر یدی وہ لگنا چاہتے ہیں تو مارگ درشک بن کر کے مارگ درشن دینا چاہیے۔ بودھ دھرم میں پہلی بار جو سنتان اتپن ہوتی ہے ماتا پتا کو، اس کو گھر کا گرو سمجھتے ہیں اور اس کی شادی کرتے نہیں۔ وہ یہ نیم ہے، پہلی سنتان جو اتپن ہوتی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی، کریں گی ہی نہیں، وہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہے تو نہیں کریں گے۔ یہ سماجک قانون کیوں بنایا؟ اس کے بنا دھرم کی رکشا نہیں ہوتی۔ دھرم کی رکشا کے لیے دھرماتما چاہیے پڑتے، دھرماتما بننا پڑتا ہے۔ پہلی سنتان جو ہوتی ہے وہ گھر کا گرو، گھر میں بھی کوئی گرو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ تو سنساری بن گئے اور سنتان کو جنم دینے جا رہے ہیں، اور جنم بھی ہو گیا، آپ تو سنساری بن گئے، آپ کو بھی کوئی ایک گرو چاہیے کہ نہیں؟ تو سامنے جو ہے اسی کو گرو بناؤ نا، ایک کو گرو بناؤ۔ گھر میں دھارمک ماحول رہے گا، گھر میں شانتی رہے گی، گھر میں اپار سکھ رہے گا، घर आश्रम बन जाएगा। वह पहली संतान अगर धर्मात्मा बन जाती है तो घर को भी सुधार देता है और पर को भी सुधार देता है। तो इस ओर ज्यादा ध्यान देना है, अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग पर, एक बच्चे को मोक्ष मार्ग पर छोड़ें और एक बच्चे को जैसा समझते हैं वैसा करें, वो भी निकलना चाहता है तो निकाल दो, कोई बात नहीं, कल्याण हो सकता है, धर्म की प्रभावना त्याग से संभव है। प्रवचन श्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति यानी भगवान के वाणी पर भक्ति करना, भाव श्रुत को जगा करके। अहिंसा परमो धर्म।